आश्रम बच जाता है और सात गोप गोपियां उनके घर में उपस्थित होती हैं, बधाई के कीर्तन होते हैं, गोप और गोपी खूब आनंद से नृत्य कर उठते हैं, दधि कांडा होता है और उत्सव होता है। विश्वानंद महाराज लाखों गायें दान करते हैं, अपने घर में जो कुछ होता है वो खुशी से मारे सब कुछ लुटा देते हैं, फिर भी कमी नहीं पड़ती। तो कल तो ये उत्सव होगा और आज हम लोग बृहद भगवतामृत से कल से पढ़ रहे हैं, बृहद भगवतामृत के रसायन को पाठ कर रहे हैं। तो दोनों में से कौन सा प्रसंग लिया जाए, राधा जी का प्रसंग लिया जाए? ये तो ये भी राधा जी का ही प्रसंग है, तभी तो कल हम सवेरे 6:30 बजे या 7 बजे से बैठेंगे, उनकी महिमा कीर्तन और पदावलियां हैं कीर्तन करेंगे, उनके संबंध में कुछ बोलेंगे। फिर शाम को क्या लिखा प्यार से है, हम लोग अपना कुछ करेंगे ना, रासलीला हमारा उद्देश्य नहीं है, वो तो लोगों को संग्रह करने के लिए ऐसे लोगों को, इसलिए वो ना कर करके यदि 5 से 6 हम लोगों का ये राधा जी के तत्व के संबंध में हम लोग करेंगे 5 से 6 और 6 से 8 तक वो लोग करेंगे। 5-6 बजे से पहले आए तो हम लोग 5 बजे बैठ जाएंगे, कीर्तन थोड़ा सा कर लेंगे और इसके बाद में करेंगे। तब यही समझो कि श्रीमद् भागवत श्रीमती राधिका जी का के लिए है, श्रीमद् भागवत का प्रकाश कृष्णचंद्र के लिए नहीं है, कृष्ण की उन मधुर लीलाओं के लिए जो गोपियों के साथ में संपन्न होता है, गोपियों की महिमा और विशेष करके श्रीमती राधिका जी के लिए, क्योंकि अनया राध तो नूनम, अनया माने ये जिसको कृष्ण लेकर के गए हैं, सब गोपियों को छोड़ करके और उनको लेकर के गए हैं, आराध्य तो रा ध माने राधा जी का नाम, इसलिए स्पष्ट रूप से नहीं दिया कि उनको 6 महीने की मुच्छा हो जाती थी राधिका जी का पूरा नाम लेने से, इसलिए आराधना शब्द के व्यवहार के द्वारा गुप्त रूप से उनका नाम लिया, उसमें ही उनके भाव बदल गए, फिर दूसरा चैप्टर ही आरंभ कर देना पड़ा, नहीं तो चैप्टर अभी चल रहा था वो तो चैप्टर बदल गया और दूसरा चैप्टर आरंभ हो गया, तो इसलिए ये राधिका जी का नाम। विशेष करके श्रीमद् भागवत का ऐसा कोई श्लोक नहीं है जो किसी न किसी प्रकार से राधा जी के उद्देश्य से हो, सभी श्लोक निगम कल्प तरुर गलितं फलम सुखम खाद अमृत संजितम पीवत भागवतम रसमालयम, रसमालयम कृष्ण रसो वैश्य है राधिका जी के लिए, गोपियों के लिए है, यदि राधिका जी नहीं रहे तो कृष्ण रसमय नहीं है, वो निर्गुण निराकार अव्यक्त अनादि ब्रह्म हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर राधिका जी का महत्व ही श्रीमद् भागवत में बतलाया गया। एक बात और समझना चाहिए, किसी कोई भी चीज परोक्ष एक होती है और एक प्रत्यक्ष, मान प्रत्यक्ष कहो या डायरेक्ट, और एक इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष से परोक्ष का में अधिक रस होता है। जैसे मैंने कहा किसी का नाम तो नहीं लिया किंतु परोक्ष से कहा, जिसको कृष्ण अकेले सब गोपियों को छोड़ करके ले गए और जिसका श्रृंगार वश में श्रृंगार किया अकेली को, और जो उनके विरह में सहसा तड़पती हुई वहां पर रह गई, जिसको छोड़ करके कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, ये कौन गोपी थी? ये परोक्ष है। जैसे हम कहें किसी के संबंध में, एक लड़का नवद्वीप से आया है लाल कपड़ा, आज ही आया और आज गोवर्धन परिक्रमा में गया, आज ही सवेरे आकर के चला गया। तो सब लोग तो नहीं बतला सकेंगे, जो जानते हैं वो बतला सकते हैं। तो वो कौन है? वैसे ही किसी के संबंध में बतलाया जाए। हमारे साथ में, जिनके साथ में महाराज ह्यूस्टन और अमेरिकी इत्यादि में गए, सफेद कपड़े में हैं, केस थोड़े से हैं, मुस्कुराते रहते हैं ना? और दिल्ली रहते हैं और बीच बीच में विशेष करके शनिवार को आते हैं, रविवार तक रखते जाते हैं और हमारे सब कामों में सहायता करते हैं, वो कौन है? इसको कहते हैं परोक्षवाद। इसे श्रीमद्भागवत परोक्षवाद से राधिका जी के इसमें रस होता है, इसलिए नाम नहीं लिया, किंतु उससे अधिक नाम लिया। जिसकी कृष्ण आराधना करते हैं, जिसके बिना रह नहीं सकते, जो उनकी स्वरूप शक्ति है, ये कौन है? सहज रूप है, इसलिए श्रीमद्भागवत परोक्ष रूप में ही और डायरेक्ट रूप में भी राधिका जी का ग्रंथ है, राधिका जी के प्रशंसा के लिए है। इसके अतिरिक्त और भी देखिए, कोई भी व्यक्ति आराध्य देव की स्तुति स्तव इत्यादि करता है, उद्धव जी को कृष्ण ने ब्रज में भेजा, कृष्ण के आराध्य, उद्धव के आराध्य देव कृष्ण हैं, किंतु उद्धव जी ने कृष्ण की स्तुति स्तव या प्रशंसा या उनकी चरण की धूलि मांगने के लिए कहीं भी कोई श्लोक नहीं बोला, कहीं भी नहीं देखा जा, किंतु किसके लिए कहा? गोपियों के लिए सब जगह कहा, और गोपियों में एक गोपी के लिए नंद ब्रज स्त्री नान पाद रेणुम, ये किसके लिए कहा होगा? एक वचन, इसलिए एक वचन में किसके लिए ये उन्होंने कहा होगा, इसका जी अनुमान कर सकता है। कुछ लोग एक प्रश्न करते हैं, विशेष करके गौड़ीय संप्रदाय से, कि उत्कर्षता दे करके हजम नहीं कर पाते और उनको भीतर ही भीतर क्लेश और क्या ईर्ष्या होती है। ऐसे कुछ सांप्रदायिक व्यक्ति हैं, जैसे वल्लभाचार्य के कुछ व्यक्ति हैं, निम्बार्क के हैं, कुछ और लोग हैं, वो लोग कहते हैं हमारे यहाँ वेदों की अधिक महत्ता है, भारतवर्ष में वैदिक धर्म प्रधान, सनातन धर्म प्रधान भारतवर्ष है, उनका ये है। वैदिक में क्रियाओं में वेद की रीति से जो विवाह होता है वही मान्य है, वैदिक रीति से जिनका विवाह नहीं हुआ और वो मिलते हैं तो ये व्यभिचार है। कृष्ण की शादी विवाह वैदिक रीति से द्वारका की महिषियों से हुआ, यदि कृष्ण की पूजा भी करनी है तो उनके साथ में ये पूजा वैदिक रीति के अनुसार मान्य है, किंतु हम लोग सुनते हैं उनका कथन कि शयन घोष के साथ, शयन माने अभिमन्यु, आयान घोष अभिमन्यु, आयन घोष के साथ में श्रीमती राधिका जी की शादी हुई थी, यह वैदिक रीति से। अब कृष्ण के साथ में उनका जो प्रेम है ये वैदिक रीति के आर्य पथ के उल्टा है, तो ये कब से ऐसा हुआ जो राधा जी के साथ में उनकी पूजा होने लगी? ये पूजा वैध नहीं है, होना चाहिए उनकी धर्म पत्नी होती तो उनके साथ में उनकी पूजा वैध थी, जैसे सीता का राम कन्या ये ठीक है, रुक्मिणी कृष्ण ये ठीक है, लक्ष्मी नारायण ये वैध है, ये सब लोग कहते हैं। इसलिए राधिका जी की कृष्ण के साथ में उपासना या ये वैध नहीं है, ये क्यों आयान घोष के साथ में उनकी शादी दिखलाई गई? शास्त्रों में विशेष करके ब्रह्म वायु आते पुराण इत्यादि में, ब्रह्मांड ना ब्रह्म वैवर्त, तो ये सब मिलता है। ऐसी स्थिति में राधा जी के साथ में, तो कृष्ण के साथ में राधा जी का होना ये वैध भाव नहीं है, ये शास्त्र विरोधी है। किस लिए गौड़ीय वैष्णव उनकी उपासना को परकीय को श्रेष्ठ मानते हैं? इसमें कुछ कहने का ये है, पहली बात ये, उद्धव जी बाल ब्रह्मचारी हैं, सुखदेव गोस्वामी जी बाल ब्रह्मचारी हैं, सनत सनंदन कुमार इत्यादि ब्रह्मचारी हैं, और इन लोगों के भी पिता के पिता प्रपितामह ब्रह्मा जी चारों वेदों के वक्ता हैं। उनके समय वैदिक रीति को जानने वाला कोई नहीं, वैदिक ये जो रीतियां हैं इन सब के मूल वक्ता ये हैं कृष्ण ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से कोई अथॉरिटी और नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी वहां पर कौन वन में, भंडीर वन में अपने आप अपने मुख से दोनों की शादी कराई, इसका ये प्रमाण है, इसका ये प्रमाण है। इसलिए भांडीर वन में आज भी ऐसा देगा जहां जीत गोविंद इसके प्रमाण भी है, मैं भाई मेदु अंबरे इत्यादि में उन्होंने बतलाया जो उनके साथ में विवाह। एक बात तो ये शादी हुई, अब ब्रह्मा जी के जबकि वो बालकों को और बछड़ों को और बालों को हरण किया, उसी साल में अयान घोष के साथ में कृष्ण की राधा जी की शादी का प्रसंग आता है उसी वर्ष, और सारी गोपियों का कृष्ण से, उस समय कृष्ण ही बने थे सब गो, इसलिए कृष्ण की से गोपियों सब गोपियों की शादी हुई, ललिता विशाखा इत्यादि जितनी है, इसलिए उस वर्ष में जितनी भी शादियां हुई कृष्ण से। और ये सायन घोष तो कृष्ण बने नहीं थे, सायन घोष है कौन? आयान घोष, भाई सायन भी कहते हैं, हमको सुधारो मत, सायन घोष भी कहते हैं, आयान भी कहते हैं, अभिमन्यु भी कहते हैं, बहुत से नाम हैं। तो ये रायन घोष भी कहते हैं, बहुत से नाम हैं। ये आयान माने अभिमान, जो अभिमानी है, अभिमान का मतलब कृष्ण का अभिमान, कृष्ण का एक अभिमान यहां पर आयान घोष हुए हैं। जैसे एक अभिमान है कंस का, जो कंस ने कृष्ण को मारना चाहा, उसी जो ब्रज में गोलोक नित्या वहां पर जो एक अभिमान है, एक भाव है, वो भाव यहां मूर्तिमान रूप में प्रकट होता है इस ब्रज में, ये प्रकट लीला में वो कंस बना और प्रकट रूप में कुछ कार्य कर रहा है। ये कंस और कोई नहीं, एक अभिमान है जो नित्य गोलोक वृंदावन धाम में रहता है और आ करके ये कराता है पारकिया का भाव आयान घोष कराता है, और ब्रज में कंस का भाव ये करता है मानो कंस चारुण को भेज करके मथुरा में बुलवाया है ब्रज से कृष्ण को, 3 महीने का ये भाव दिखलाया गया वहां, नहीं तो ये भाव सिद्धि नहीं होती। हम कह रहे हैं किंतु कितने लोग समझेंगे इसको, देखो समझो, समझने की चेष्टा। वहां पर कुछ अभिमान है, जैसे कि पारकिया अभिमान वहां है, पारकिया वहां पर कोई चीज नहीं है, गोपियां समझती हैं कि हमारी हमारे परकीय पति हैं, हमारे प्रियतम हैं कृष्ण, वहां पर शादी फादी का कोई यहां पर गोलोक वृंदावन में चीज नहीं है, उनकी स्वरूप शक्ति है, केवल नित्य काल ये अभिमान वहां पर रहता है, है? कि कृष्ण हमारे प्रियतम हैं, विवाहित नहीं, ये अभिमान ही यहां पर ब्रज लीला में यहां प्रकट पर्व में वो विवाह का रूप स्थूल रूप धारण करके आयान घोष कहो या अभिमन्यु कहो, ये सब एक होता है, वो कृष्ण से अतिरिक्त नहीं है। जैसे जोग माया ही सर्वस्व है, किंतु इस जगत में उनका एक भाव छाया की भांति महामाया कहलाती है। महामाया और कोई चीज नहीं है, सर्व शक्ति की एक छाया शक्ति जो भी सुकाशीजन इत्यादि करती है। ऐसे ही कृष्ण का एक अभिमान फूल रूप में वहां पर अभिमन्यु के रूप में प्रकट हुआ है, और किसी से उससे भी शादी नहीं हुई, केवल अभिमान की पार्थिया भाव की सिद्धि के लिए राधिका जी का यह अभिमान जो मैं उसकी पत्नी हूं, बस इस अभिमान की को पूर्ति कराने के लिए अभिमन्यु के रूप में कृष्ण जी का एक अभिमान, अभिमान माने छाया हुआ हुआ शास्त्र में ऐसा, इसलिए अभिमन्यु उसका नाम रखा गया, नहीं तो दूसरा नाम रखा जाता। इसलिए कृष्ण का एक अभिमान एक भाव वो भी छाया का, और उसमें भी शादी से नहीं हुई, उसने समझा कि ये शादी हुई, शादी नहीं हुई। जैसे किसी भी गोपी का उसके पतियों के साथ में किसी के साथ में शादी नहीं, बल्कि कृष्ण उनके पति के रूप में होकर के उनसे शादी करवा लिया, लोगों ने समझा दिया मैं उसी शादी हूं, ये सब प्रक्रिया भाव की सिद्धि के लिए। इसलिए आयान भी कोई दूसरा नहीं है, कृष्ण का ही एक अभिमान है, लौकिक अभिमान है। वहां पर केवल भाव होता है, यहां पर वो मूर्तिमान धारण करके कृष्ण की लीला को संपादन कराता है। अब इस चीज को ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि लोग न समझें, ये यदि बतला दी जाए ऊपर से ये कृष्ण ही अभिमन्यु तो लीला ही गड़बड़ हो जाएगी, लोग नहीं समझ सकेंगे, रस वो नहीं आएगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने गुप्त रूप से ये वे लोग तार्किक लोग जो तार्क तर्क करते हैं, विवाद बेकार का दिखाते हैं, ऐसे लोगों को की प्रतीति के लिए उन्होंने विवाह करा दिया। एक बार नहीं दो दो बार कराया। दूसरी बात एक है, लक्ष्मी जी का नारायण के साथ में शादी का कहां उल्लेख है? नारायण लोक में भी वैकुंठ लोक में कहीं है उल्लेख? कहीं तो उल्लेख नहीं। अच्छा, यदि वहां से ये अवतरित होकर के दोनों आते हैं तो फिर इन दोनों की शादी की आवश्यकता होगी? एक दंपति दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से दोनों मथुरा में आए दो वर्ष के लिए, चार वर्ष के लिए, तो यहाँ के लोग कैसे जानेंगे जिसे इनकी शादी, फिर उनको प्रतीति कराने के लिए फिर यहाँ पर शादी करानी है? तो राधिका जी के कृष्ण का तो नित्य ही संबंध है, उसको इस जगत में शिव से संबंध करने की कोई जरूरत नहीं, और यदि जरूरत है तो ब्रह्मा ने खुद जिसके मुख से वेद निकलते हैं, वेद के मंत्रों से जो विवाह होता है, और वही वेद मंत्र का ज्ञाता और वक्ता यदि खुद ही वो शादी कराए दे तो वो प्रमाणिक है ना, दूसरे का किया हुआ है। इसलिए इसमें तर्क की कोई गुंजाइश नहीं है, यह उनका भ्रम है। अब थोड़ा सा इस पर चलते हैं। जावई से आर्थिक अजादी आप कामई जोगवय स्वरईरपी सदात्म निराश गोष्ठ्यम कृष्णस्त तद भगवत सफदार विंदम नस्तम तनेश विजहो परिरभ्यता। साधारण इसका बेहतर ले गया कोई दे दो क्या दो ये महालक्ष्मी बैकुंठ की लक्ष्मी जिनकी चरणों की सेवा करती हैं, ये नहीं बतला जो कैसे सेवा, मानव सेवा करती हैं कि साक्षात सेवा करती हैं, ये नहीं बतलाया, इसमें तर्क की गुंजाइश है ना? नहीं आया समझ में क्या कहा? लक्ष्मी जी जिस चरणों की सेवा करती हैं, साक्षात करती हैं, मन ही मन करती हैं, मानस सेवा करती हैं, सिद्ध अपने सिद्ध स्वरूप से सेवा करती हैं, क्या करती हैं इसमें नहीं लेकर किंतु सेवा करती हैं। किस लिए कहा? लक्ष्मी जी परम पतिव्रता हैं, परम पतिव्रता है, वही सब्जेक्ट यहां पर भी लगाओ, पतिव्रता श्रोमणी विश्व की सबसे महालक्ष्मी जी को कहलाता है, कहलाती है। किंतु उसी चरणों की सेवा करती हैं, सेवा करते हैं मन से, अभी व्याख्या नहीं करेंगे पीछे बतलाएंगे, किंतु यही समझो सेवा करते हैं अपने मन से। वृंदावन में साक्षात सेवा करने की अभिलाषा अब तक पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए उनको कहा जाएगा ये सेवा करती हैं मन से। नारायण की चरणों की सेवा करती हैं, किंतु उससे हमारा तात्पर्य नहीं। कृष्ण की सेवा करती हैं मानस, नारायण की चरणों की सेवा करती हैं मन में होती है ये कैसे कृष्ण की चरणों की सेवा करें। तब बतलाओ ऐसी पतिव्रति स्त्रियां जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं और वो जिसकी सेवा करता है वो कृष्ण, जिनके चरणों की सेवा करता है, तो बतलाओ तो कितना ये प्रमाणित हुआ? आया समझ में? नहीं आया, फिर से समझो। ऐसी महालक्ष्मी भी मन से सेवा करती हैं, कैसे? कृष्ण की, नारायण के चरणों को पलोड़ती हैं और उसमें कृष्ण की माधुरी उनको याद आती है। चरण तो दबाते हैं इनका और मन से चरण उनका कहाँ चला जाता है? कृष्ण के कोमल चरणों को पलटने की इच्छा होती है ब्रज में, किंतु ये उनको अधिकार नहीं मिलता साक्षात। इसमें मन ही मन में वो करती हैं, जैसे हम चौकट को दबाते हैं कहते हैं कि शंकर जी की सेवा हो रही है, तो ऐसे ही ये महालक्ष्मी जी कर रही हैं, जिसकी आकांक्षा करती हैं, जिनके चरण की वो सेवा करना चाहती हैं। और वह व्यक्ति क्या करता है? जिनके चरणों की सेवा करता है उसके चरण की धूली कुमकुम अपने सिर पर लगाता है, कितना उसकी श्रेष्ठता है ये समझो। ऐसी ये श्रीमती राधिका जी पतिव्रता की भी, ये पतिव्रता है श्रीमती राधिका जी, इसलिए आक्षेप करने की कोई भी बात नहीं। इन सब चीजों का तात्पर्य सदगुरु से नहीं सुनने के वजह से बड़े बड़े पंडितों को मोह हो जाता। कल हमने बताने चतुर्वेदी चारों वेदों के आचार्य पंडित पढ़ाने वाले न्याय मीमांसा तर्क और व्याकरण सबके आचार्य कल आए, वो बतला रहे थे उद्धव जी प्रहलाद जी और जितने हैं सब अर्थ धर्म काम मोक्ष से सेवा करते, यहाँ तक कि अर्जुन को भी बतलाया सुदामा भी प्रत्यादि सब गोपियों को तो न जाने वो क्या समझेंगे, उनसे वार्तालाप करने से तो फिर हमको खंडन करना, अब तभी उनके विचारों का मैंने खंडन किया है? वो कोई उत्तर नहीं दे सके, उत्तर देने के लिए है नहीं इतने भाई विद्वान। इसलिए ये जो बड़े बड़े विद्वान बरतने हैं राधा जी के संबंध में अपने गुरुमुख से नहीं सुना, उनके गुरु जी भी ऐसे हैं बिल्कुल नहीं जानते हैं, इसलिए ये लोग भी विचारों को जब सुनते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यदि ऐसे तर्कों के साथ में उनको बतलाया जाए युक्तियों से प्रमाण के आधार पर उनकी बोलती बंद हो जाएगी। जैसे यही प्रश्न उठा था आज से 300 वर्ष पहले जयपुर की गलता गद्दी में और बलदेव विद्याभूषण ने उनके मस्तक उनकी जीवा को काट दिया, इसी सब प्रश्नों के उत्तर में कुछ दिनों तक बंद था, अब फिर वो उठ रहे हैं, सिर उठा रहे हैं, देखते हैं कि ऐसा कोई है नहीं, कोई निकल जाएगा जो उनके मुख को काट जीवा को काट देगा स्तंभन कर देगा। तो लक्ष्मी जी जिनको जिनके चरणों की सेवा करती हैं ब्रह्मा जी उसके चरणों के पीछे करते हैं आत्मकाम मुनिगण आत्माराम और आत्मकाम आत्मारामस्य मुनियों क्रमे कुर्वंत अहतो किं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। आत्माराम जैसे लोग मुनि लोग सुखदेव गोस्वामी सनत सनंदन सनत कुमार लोग और भी कितने शंकर को भी ले लीजिए सब कुछ सब लोग ऐसे ऐसे मुनि लोग जिन चरणों को ध्यान में लाने की चेष्टा करते हैं और ध्यान में ही धारणा के द्वारा अर्चन करते हैं, ब्रह्मा इत्यादि सभी लोग, उसको गोपियों ने क्या किया? ध्यान की जरूरत नहीं, साक्षात रूप में रात के समय कुछ मंडले समर्पित एक कृष्ण चरण कमल साक्षात आलिंगन करिया देह जनित ताप दूर किया था। गोपियों ने उनको अपने वस्त्र पर धारण करके उनको साक्षात रूप में अर्चन किया था। टीका में इसको उल्लास देंगे, इनकी जब व्याख्या करेंगे इस चीज को उल्लास देंगे, क्योंकि अभी अभी साधारण रूप में आखरी अर्थियां बतला कर देंगे कि वही कृष्ण ही ऐसा किया था। कृष्ण का चरण उनका अलंकार बन गया, अलंकार रूप में वो कृष्ण उनके वस्त्रक्षल पर या अंगों पर विराजमान हो गए। उनकी कृपा को पाने के लिए लिखेंगे ये राधिका जी का, ये राधिका जी की महत्ता है। जब ही कहो, कितना 7 बज गया, जब ही कहो भक्त ही साधारण भक्त लोग हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको छोड़ दो। यहां पर जितने लाल कपड़े वाले बैठे हैं करीब करीब पूर्ण रूप से तो नहीं, कुछ ना कुछ छोड़ करके आए हैं। अनर्थ हो सकता है इनमें, कुछ ने तो संपूर्ण रूप से छोड़ दिया है और छोड़ करके गुरु सेवा करने के लिए आए हैं। कुछ छोड़ करके आए तो हैं गुरु अनुगत में भजन तजन नहीं करते, उच्छृंखल होकर तभी छोड़ करके आए हैं। एक साधारण अभी भी जिनके अंदर में कामना है, गुरु की सेवा भी नहीं कर रहे, तभी तो संसार को छोड़ दिया। इसलिए संसार छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, स्त्रियों की मार से झाड़ू से कभी कभी पति तंग होकर के छोड़ सकता है घर, माता पिता के कभी कुछ कारण से रूठ गया लड़का वो संसार को छोड़ सकता है, इसमें कोई बात नहीं। काली कुरूपा कटु बचना और जो कानी स्त्री काली कलूठी मुक्तेरी दांत बड़े बड़े घर में छप्पर नहीं टूटी फूटी हंडिया दो चार है पूरा पानी घर में आता है, घर में चूहे उसके कभी नहीं आते हैं। और कुरूपी कहिए और कटु बचना, सत्य में कटु बचन करती है, ऐसे भी पति को छोड़ करके लोग सभी नहीं आना चाहते। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसी स्त्री ने खूब अत्याचार किया या वो स्त्री मर गई तब मुड़ मुड़ाए भय ऐसे लोग छोड़ देते हैं, तो ये घर छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, तो वही छोड़ दिया। साधारण कभी भक्त नहीं हुआ। और कुछ भक्त लोग हैं हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी हैं कि और जो हुए हैं वो लोग सचमुच में गृह त्याग करके संपूर्ण से आना आसक्ति को छोड़ दिया और आए और भजन किया। छोड़ देना सहज है किंतु उसमें रुचि के साथ में भजन करने की जो प्रवृत्ति है सेवा की वासना, ये बड़ी चीज है, ये पॉजिटिव है। निगेटिव हम कर सकते हैं छोड़ दिया, ऊपर से छोड़ दिया, भले ही आसक्ति नहीं चढ़ा उसको छोड़ दिया। तो क्या कारण? कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, घर न छोड़कर कभी यदि भजन की प्रवृत्ति यदि बात तो कोई बड़ी बुरी बात नहीं, किंतु घर छोड़कर के भी सब कुछ छोड़ दिया ऊपर से और भजन करने के एकांतिक गुरु सेवा की विषम नहीं करते हुए जो प्रवृत्ति है भजन सेवा की वासना ये नहीं हुई तो क्या हुआ?
मौन हो जाना सहज है। बड़े बड़े मायावादी और कर्मी लोग भी कुछ देने के लिए मौन धारण कर लेते, ये सब बड़ी चीज नहीं है। इसलिए कृष्ण सेवा की वासना के साथ में गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए भजन करना, ये पॉजिटिव जो चीज है ये बड़ी चीज है। इसी को यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं, गोपियों में ये सेवा की वासना सर्वोत्तम है, विश्व में, ब्रह्मांड में, ब्रज में, सर्वत्र। इसलिए यहाँ पर बतला रहे हैं कि भक्त ही साधारण, जो भक्त नहीं वो भी घर छोड़ देते हैं, स्त्री पुत्र परिवार को छोड़ करके आ जाते हैं, वृंदावन में रहते हैं, मांगते हैं, खाते हैं, पैसा भी जमाते हैं और फिर अपने घर की सेवा भी उससे करते हैं, ऐसे भी बहुत से लोग हैं। तो छोड़ना कोई बड़ी चीज नहीं है। तो स्वजन इत्यादि को ऊपर त्याग करके, और बहुत से लोग हैं जो स्वजनों को छोड़ करके भजन करते हैं संपूर्ण रूप से गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, इस रूप से कैसे श्री कृष्ण नाम सहितम तन्नाम रूप चैतादि सुकृष्णानुकरण रसनामन, इस श्लोक के अनुसार में जो भजन कर ब्रज में एकांतिक अनुगत्य में सब समय नाम रुचि के साथ में संबंध ज्ञान के साथ में भजन करते हैं, ऐसा करते हैं सब छोड़ करके, तो फिर इनकी महिमा भी